नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को सैन्य कार्रवाई के साथ भारतवासियों के मूल्यों और भावनाओं की अभिव्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी के कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे, देश में विकास आधारित राजनीति की नई इबारत लिखी।
राज्य के कई हिस्सों में हीट वेव का दौर जारी रहने के आसार। जयपुर, उदयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। और प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए कार्यशालाएं होंगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों से लाभ लेने का आग्रह किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान का एकमात्र उद्देश्य भारत को नुकसान पहुंचाना है, वहीं भारत का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना और अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करना है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों के मजबूत होने से अर्थव्यवस्था सशक्त बनेगी। श्री मोदी आज गुजरात के दाहोद में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भारतवासियों के मूल्यों और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत घरेलू मांग को पूरा कर अन्य देशों को भी उत्पाद निर्यात कर रहा है।
आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाए, ये आज के समय की मांग है।
प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने आज अपने कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन 2014 में श्री मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ये देश के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ रहा जिसने भारत में गठबंधन की राजनीति के 30 वर्ष के युग को समाप्त किया। देश की जनता से मिले ऐतिहासिक जनादेश के बाद श्री मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ श्री मोदी ने देश में विकास आधारित राजनीति की नई इबारत लिखी। बीते 11 सालों में देश ने सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। श्री मोदी के मजबूत नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। देश में इस शैक्षणिक सत्र में 15 विदेशी विश्वविद्यालय अपने कैंपस स्थापित करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों को इसकी अनुमति दे दी है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में ब्रिटेन के लिवरपूल विश्वविद्यालय के आशय पत्र सुपुर्दगी समारोह में ये बात कही। संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि लिवरपूल विश्वविद्यालय का संचालन अगले साल से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के दो विश्वविद्यालयों ने गुजरात में शैक्षणिक सत्रों की शुरूआत की है।
गुजरात की गिफ्ट सिटी में दो यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी अपना पढ़ाई शुरू कर दी है। इस साल यूके के साउथ हैम्पटन गुड़गांव में अपना पढ़ाई शुरू कर देगा। अभी अभी हम लोगों ने यूके की दूसरे प्रमुख यूनिवर्सिटी लिवरपूल को हमने एलओआई अभी अभी हस्तांतरित किया। लिवरपूल बेंगलुरु में स्टेम एजुकेशन में यूनिवर्सिटी अगले साल से पढ़ाना शुरू करेगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली प्रवास पर हैं। आज उन्होंने राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान श्री शर्मा ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने विकास कार्य तय समय सीमा में पूरे करने के दिशा निर्देश भी दिए। पुनर्विकसित राजस्थान हाउस में कैफेटेरिया, कॉन्फ्रेंस हॉल, योग कक्ष, पुस्तकालय और टेरेस गार्डन सहित कई सुविधाएं हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 8वीं कक्षा के नतीजे आज घोषित कर दिए गए। परिणाम 96.66% रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पाली जिले के रानी उपखंड स्थित DOIT कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये परिणाम जारी किए। उन्होंने सभी सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्री इससे पहले एक निजी स्कूल में समर कैंप में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स और अन्य सामग्री को देखा। इसके बाद श्री दिलावर ने उत्वन और बोमाद्रा में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अगले दो दिनों में हीटवेव का दौर बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं पश्चिमी हिस्सों के सीमावर्ती इलाकों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री दर्ज होने की संभावना है। शेष हिस्सों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने के आसार हैं। अगले 4-5 दिनों तक राज्य में कहीं कहीं आंधी और गरज के साथ की बारिश हो सकती है। उदयपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर आज बरसात की संभावना है। इस बीच पूर्वी हवाओं के असर से अधिकतम तापमान में कमी आई है। हमारी डीग संवाददाता ने बताया कि पिछले दो दिनों से चल रहे अंधड़ से कई जगह बिजली के खंभे और पेड़ गिर गए।
डीग जिले में लगातार दो दिनों से तेज आंधी चल रही है, जिससे बड़ी संख्या में बिजली के खंभे और पेड़ धराशायी हो गए हैं। सहायक अभियंता डिस्कॉम ने बताया कि अंधड़ के कारण शहर स्थित ग्रामीण क्षेत्र की भी बिजली गुल हो गई है। क्षेत्र के नसवाड़ा, बहज, पानहोरी, पास्ता, सेव, धमारी और जाटूली थोन सहित कई गाँवों में करीब 22 से अधिक विद्युत पोल टूट कर गिर गए हैं। बारिश होने से जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। बिजली कटने और जल भराव से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालांकि अंधड़ के साथ साथ बारिश होने से मौसम में ठंडापन आ गया है, जिससे लोगों को तपती धूप और लू से राहत मिली है। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डी।
मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म रहा। पाली, जालौर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। देश में मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए आज हाई रेजोल्यूशन वाली भारत पूर्वानुमान प्रणाली का शुभारंभ किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से शुरू की गई इस प्रणाली से पंचायत स्तर तक मौसम संबंधी सही जानकारी मिल सकेगी। इसके साथ ही ज्यादा बारिश की गतिविधियों से निपटने में भी मदद मिलेगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने देश को ये मॉडल समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में बनी इस प्रणाली को 5 महिला वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। श्री सिंह ने कहा कि मौसम विभाग ने देश की अर्थव्यवस्था को 4थे स्थान पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले कुछ सालों में विभाग ने सटीक भविष्यवाणी कर संभावित नुकसान से बचाकर 50,000 करोड़ से अधिक का योगदान दिया है। सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर के महानिरीक्षक ML गर्ग ने ऑपरेशन सिंदूर में BSF जवानों की तत्परता की सराहना की है। आज जोधपुर में BSF फ्रंटियर मुख्यालय में प्रेस वार्ता में BSF IG श्री गर्ग ने सीमा सुरक्षा बल की परिचालन क्षमता और समन्वय के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान के सीमावर्ती जिलों जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर में पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन गतिविधियां जारी रहीं। BSF ने सेनाओं के साथ मिलकर इन्हें नाकाम किया।
BSF तो जिस तरह से आप जानते हैं देश की प्रथम रक्षा पंक्ति है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो BSF पूरी तरह से बॉर्डर पे डटी गई। हम एक इंच भी पीछे नहीं हटे और अटैक को मतलब ही नहीं, हमारा काम ही हमारा है। और हमारी जो महिलाएं सीमा भवानी जिसको कहते हैं हम, वो लोग भी पूरी तत्परता से बॉर्डर पे लगातार रहे और उन्होंने बिल्कुल पीछे नहीं हटे, तो मैं उनको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि लेडीज ने, गर्ल्स ने भी अपनी भागीदारी पूरी तरह से टूट दी।
प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 28 मई को जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला होगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग प्रदेश के सभी जिलों में भी कार्यशालाओं का आयोजन करेगा। इनके जरिए बुजुर्गों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के प्रयास किए जाएंगे, साथ ही उन्हें साइबर सुरक्षा के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। कार्यशाला में आहार, योग, मनोवैज्ञानिक परामर्श सहित विभिन्न सत्र होंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने ज्यादा से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों से कार्यशाला से जुड़ने का आह्वान किया है। जयपुर में रीको के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में वाणिज्यिक और आवासीय भूखंडों की ई नीलामी से आवंटन किया जा रहा है। जिले के 12 औद्योगिक क्षेत्रों में 11 आवासीय भूखंड और 27 गैर औद्योगिक आवंटन के लिए उपलब्ध हैं। रीको के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक के कोठारी ने बताया कि इन क्षेत्रों में होटल, नर्सिंग होम तथा आवासीय भूखंडों के लिए 9 जून तक आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य सरकार के साथ एमओयू कर चुके निवेशक भी इस नीलामी में भाग ले सकते हैं। प्रदेश में चिकित्सा विभाग की ओर से फलों और सब्जियों में मिलावट के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 24 मई से शुरू हुए इस अभियान के तहत फलों और सब्जियों को कृत्रिम रूप से पकाने और संरक्षित करने के लिए काम में लिए जा रहे रसायनों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही नमूने इकट्ठे कर हानिकारक रसायनों की जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे जा रहे हैं। यह अभियान 30 मई तक चलेगा। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं, लेकिन इनकी नजर ये मैच जीतकर शीर्ष दो में रहकर पहले क्वालिफायर में जगह बनाने पर होगी, ताकि इन्हें फाइनल में पहुंचने के दो मौके मिलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को सैन्य कार्रवाई के साथ भारतवासियों के मूल्यों और भावनाओं की अभिव्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी के कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे। देश में विकास आधारित राजनीति की नई इबारत लिखी। राज्य के कई हिस्सों में हीट वेव का दौर जारी रहने के आसार। जयपुर, उदयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। और प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए कार्यशालाएं होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।